الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. بس لاس میں ہم اپنی نظر کی جو سلسلہ دروس تھا امور خانداری میں حسن انتظام، اس میں سے رشتہ داریاں نبھانا کا موضوع پڑھ رہی ہیں، اور اس میں خاوند کے ساتھ تعلق نبھانا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ کے مکمل کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد سسرال والوں کے ساتھ، یعنی جس میں سے خصوصاً ساس آتی ہیں، پھر ان کے بعد سسر آتے ہیں، تو سسرال والوں سے تعلق، یہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا پچھلی کلاس میں. اور اس میں حضرت نے سب سے پہلا پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ ایکسیپٹ دم ایز بورن پیرنٹس، یعنی مقصد یہاں پہ تھا کہ اپنی حقیقی ماں باپ کی طرح سے اپنے ساس سسر کو بھی سمجھیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، اگر آپ اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں تو پھر ساس سسر کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ان کو حقیقی ماں باپ کی طرح سمجھیں، ٹھیک ہے، یا ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. فور گرانٹیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں، یہ تو ماں باپ ہیں، انہوں نے تو خدمت کرنی ہے، یہ ماں باپ ہیں، انہوں نے تو میری غلطیوں کو برداشت کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ میرے ماں باپ ہیں. تو ایسی بھی تو انفارچونیٹلی سوچ ہو جاتی ہے نا ماں باپ کے بارے میں. تو بھائی، یہاں پر یہ بالکل بھی مراد نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو فار گرانٹیڈ لیتے تھے لیتی تھیں، یہاں پہ چونکہ خواتین کی کلاس ہے، تو اب جو ہے وہ اپنے ساس سسر کو بھی فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں کہ اب میں جو بھی کروں ان کو مجھے برداشت کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہے، تو ان باتوں میں یعنی فرق کرنا انسان کو آنا چاہیے. یہاں پر مقصد کیا ہے بات کہنے کا، ٹھیک ہے، تو مقصد جو ہے نا اس کو سمجھنا اور پھر اس مقصد کے مطابق کام کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. شیطان ہمارا دشمن، اس کا کام یہی ہے کہ مقصد کو جو ہے وہ نظروں سے اوجھل کر دینا، ٹھیک ہے. بات تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کا مقصد جو ہے اس کو نظر سے اوجھل کر دیا، بس شیطان کا کام بن گیا، ٹھیک ہے. شیطان یہی کرتا ہے، شیطان کا exactly یہی کام ہے. اچھا کام بھی کرواؤ لیکن مقصد کو اوجھل کر دو ذہن سے. تو بہرحال یہ ایک مثال سے آپ کو سمجھایا کہ مقصد کتنا اہم ہے. اچھا، دوسرا مقصد کو سمجھنا کتنا اہم ہے، پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے. سمجھنا پہلے، عمل کرنا بعد میں. دوسری بات فرمائی تھی کہ نیور کمپیئر دم ود یور اون پیرنٹس، یعنی اپنے والدین کے ساتھ موازنہ نہ کریں. یہ جو کمپیریزن کرنا ہوتا ہے یہ انتہائی بیوقوفی کی حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہیں بھی نہیں چلتی، ٹھیک ہے. ساس سسر کے ساتھ تو کیا چلے گی، یہ کہیں بھی نہیں چلتی، حتیٰ کہ اپنی ذاتی اولاد کے ساتھ نہیں چلتی. کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کمپیئر کرنا شروع کر دیں کسی دوسرے کے بچے کے ساتھ، بہت بہت عام ہے ہمارے یہاں. یہ اس کا بچہ دیکھو یہ ایسے کرتا ہے، وہ دیکھو ایسے کرتی ہے، وہ اتنا، اس کے اتنے دوست ہیں، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، اس کے اتنے جو ہے وہ سوشل سوشلائز کرتی ہے اور تمہاری کوئی سوشلائزیشن نہیں ہے، اور وہ ایسی ہے اور وہ تم ویسی ہے اور تم ایسی ہو اور تم ویسی ہو، ٹھیک ہے. تو کمپیئر کرنا از ڈیڈلی، یہ مہلک ہے، یہ ہلاک کر دیتی ہے سچویشن کو. تو جہاں اپنے ذاتی یا اپنے جو ہے وہ قریبی جو یعنی جو حقیقی ماں باپ، حقیقی ماں بھائی بہن، حقیقی اولاد، ان میں کمپیریزن نہیں چلتی، تو پھر سسرالیوں کے ساتھ کیسے چلے گی، ٹھیک ہے. تو زبان کے اوپر تالے لگا لینا زیادہ بہتر ہے کسی دوسرے کو کمپیئر کرنے سے، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ آیت تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن نبیوں کو آپس میں کمپیئر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، نبیوں کو، ٹھیک ठीक है कि ये नबी इतने अच्छे थे, वो नबी इतने अच्छे नहीं थे, नाउज बिल्ला। ठीक है, तो क्या भाई आपके बाकी क्या बच गया फिर उसके बाद? तो फिर तीसरा पॉइंट था कि अगर ससुराल वाले गिफ्ट दें तो अगर वो चीज अच्छी ना भी लगे तो भी हमेशा उसकी तारीफ करें। ठीक है, तो इसमें भी काफी सारी बात हो गई थी कि भाई ये जो किसी की भी दिए हुए गिफ्ट को जो है ना वो उसकी बुराई कर लेना या उसके अंदर कमी नुक्स वगैरह निकालना, ये उस शख्स को इंतहाई बुरा लगता है। अब इसमें एक अहम बात रह गई थी पिछली क्लास में जो अभी अल्लाह ताला ने दिल में डाली, वो ये है कि आप खुद ही सोचें ना, आप ये काम करती ही नहीं है, किसके साथ नहीं करती कि वो आपको गिफ्ट दे और आप उसके गिफ्ट के अंदर नुक्स निकालें, किसके साथ आप ये काम नहीं करती हैं, ये जल्दी से आप बता दें। ठीक है, ये माशाल्लाह खवातीन हैं, खवातीन में तो ये गिफ्ट देना बहुत ज्यादा, कुछ तो जरूरत से ज्यादा ही, मतलब हमें तो तकलीफ होने लगती है कि वो क्यों करती हैं इस तरीके से। ठीक है, पर पता नहीं क्यों, मतलब एक भाई दीन का मतलब ये नहीं है ना कि तोहफे के जो है वो अंबार लगा दिए जाए। ठीक है, लेकिन बस है कुछ रिवायती रिवायात हैं, कुछ अपनी और जहन के अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है। बहरहाल गिफ्ट देना दिलाना जो है वो बहुत ज्यादा, यानी लिमिट से बढ़ करके ना, अपनी वसत से बढ़ करके जो है वो जाके गिफ्ट देना, इसकी कोई तुक नहीं बनती है। भाई पुरानी रवायात चल रही है तो चल रही है, बात नहीं सुन के देनी, बात नहीं मान करके देनी, बस चल रहा है जैसा मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगी, तो बस चल रहा है मामला, दर अहम कर। ठीक है, तो सोहर का क्या, किसका गिफ्ट आपको मिले तो आप उसकी तारीफ यानी उसकी नुक्स नहीं निकालते। शौहर का तो रहने देना, ये तो अब हम उमूमी बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ही पता है, जिनसे आप मोहब्बत करती हैं, ठीक है, जिनसे आप मोहब्बत करती हैं उनके गिफ्ट के अंदर कभी भी नुक्स नहीं निकालते। ठीक है, ये एक उमूमी बात, अच्छा जवाब दिया उन्होंने। और इसके अलावा भी बताएं, सिर्फ मोहब्बत करने वालों के साथ खाली ऐसा होता है या कुछ और भी कि उनके गिफ्ट्स के अंदर आप कभी भी नुक्स नहीं निकालते? ठीक है, फ्रेंड्स तो मैं भी थोड़ा सा और अगर इसमें क्वालिफाई कर दें, पेरेंट्स वालिदैन, हम उमूमी बात कर रहे हैं, हम ये जो आप जो जवाब दे रही हैं ना, ये खसूसी किस्म के जवाब है, पेरेंट्स वालिदैन, किसी ने कहा दोस्त किसी ने, लेकिन इन्होंने उमूमी जवाब दिया ना कि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके गिफ्ट्स को नुक्स नहीं, उसके उनके गिफ्ट में नुक्स नहीं निकालते, अगरचे के वो कोई इतने अच्छे गिफ्ट ना हो, लेकिन आप उनके गिफ्ट में नुक्स नहीं निकालते। तो उमूमी जवाब देना, थोड़ा सा एक और लफ्ज रह गया खाली, जिनका एहतराम करते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है, ये भी उमूमी जवाब है कि जिनका आप एहतराम करते हैं तो उनके गिफ्ट के अंदर आप नुक्स नहीं निकालते। और तीसरा भी एक लफ्ज है जो कि मैं सुनना चाह रहा हूँ, वो आप उसका ताल्लुक ससुराल के साथ है, ठीक है, और उसका ताल्लुक आजकल के अहवाल के साथ है। ठीक है, जिनसे आप अपना ताल्लुक खराब नहीं करना चाहते। ठीक है, अब इसी चीज को दूसरे लफ्ज में अगर बताना चाहें कि जिनसे आप अपना ताल्लुक खराब नहीं करना चाहते, तो इसके लिए दूसरा लफ्ज होगा अहमियत, जिनकी अहमियत आपके दिल में हो ना। ठीक है, डर भी चले चलता है कि अगर डर हो कि नुक्स निकालूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो उनमें भी आप नुक्स नहीं निकालते। ठीक है, मुरव्वत में नुक्स नहीं निकालते, मुरव्वत तो ठीक है, मुरव्वत भी किसी वजह से करते हैं ना, किसी के साथ मुरव्वत। तो जिनके जिनको ताल्लुक को आप अहम समझते हैं ना, अहम अपने लिए इंपॉर्टेंट समझते हैं, ठीक है, उनके गिफ्ट के अंदर आप कभी नुक्स नहीं निकालते। अब जाहिर है जिनसे मोहब्बत होती है वो अहम होते हैं, राइट, जिनसे मोहब्बत होती है वो अहम होते हैं ना, जिनका आप एहतराम करते हैं वो अहम लोग होते हैं, जब भी तो आप उनका एहतराम करते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए आपके दिल में अहमियत होती है ना, जिस ताल्लुक को आप अहम समझते हैं, उसके गिफ्ट के अंदर कभी भी नुक्स नहीं निकालते कि अगर ये नाराज हो गए, अगर इनको बुरा लग गया तो फिर क्या होगा, फिर मेरा ताल्लुक खराब हो जाएगा, फिर जो है वो नुकसान होगा, फिर मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसूल सामने रखें कि ससुराल के साथ जो ताल्लुक है इसको भी अहम समझना है भाई, क्या ये गैर अहम ताल्लुक है, इसकी कोई हैसियत नहीं है कि खराब हो गया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता,
वही होता है ना, अल्लाह का हुक्म कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तोड़ दिया तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म अहम नहीं है। उसी तरह ससुराल के गिफ्ट के अंदर नुक्स निकाला, कुछ नहीं होता, क्या कर लेंगे मेरा, राइट, क्या कर लेंगे मेरा, तो इनके गिफ्ट के अंदर नुक्स निकालो। ठीक है, तो ये जो मिजाज जिसका भी बना हुआ होता है, ठीक है, तो वो फिर बेएहतियाती करता है मामलात के अंदर और तोहफों के अंदर नुक्स निकालता है। ठीक है, तो ससुराल की अहमियत का दिल में होना, क्यों, निकाह की अहमियत जब दिल में होगी, इस शादी के ताल्लुक की अहमियत जब दिल में होगी, तो ससुराल की भी अहमियत दिल में होगी ना। लेकिन याद रखें, हमेशा याद रखा करें अपने दुश्मन को, अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं भूलना है हमने। हमारे दुश्मन इसी मेहनत में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लोगों के दिलों में से निकाह की अहमियत को बाहर निकाल दें, शादी की अहमियत को बाहर निकाल दें, इस ताल्लुक की अहमियत को खत्म कर दें या कम कर दें। ठीक है, वो मुख्तलिफ तरीके उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं तालीम, हाँ तालीम, नाउज बिल्ला, गंदी तालीम का जेवर हासिल करो, अच्छी तालीम हासिल नहीं करो, इस मर्दों वाली तालीम के जेवर से अपने आप को मुजयन करो, अपने पैरों पर खड़ी हो और जो है वो अपना करियर बनाओ, अपना जो है वो आगे जाकर के जॉब करो। क्यों कर रहे हैं वो सब कुछ, इसलिए ताकि इस अजदवाजी रिश्ते की अहमियत कम हो जाए और बिलाखिर होते होते कम होते 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 खत्म हो जाए, जैसे कि हो गई है, राइट, जैसे कि हो गई है। या ये कि ऐसे गंदे अफाल करवाते हैं, ऐसे बुरी लड़ाइयां झगड़े करवाते हैं माँ बाप के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे झगड़े करवाते हैं ताकि औलाद के दिल में निकाह की अहमियत खत्म हो जाए बल्कि नफरत शुरू हो जाए कि भाई जब मैंने अपने माँ बाप को ऐसे लड़ते हुए देखा है तो मैं क्यों करूं शादी, राइट, मैं ऐसे ताल्लुक में नहीं जाना चाहती जिसके अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं खाली। तो क्या माँ बाप की लड़ाई की झगड़ों की वजह से क्या हुआ, निकाह की अहमियत कम हो गई। ठीक है ना, अब जब अहमियत कम हो जाएगी तो फिर उस तरह की हरकतें करेंगी, मारे बांधे किसी तरीके से किसी ने शादी करवा भी दी, करना तो नहीं चाहती थी लेकिन करवा दी किसी ने, तो अब जो है वो नुक्स निकालेगी, तोहफों के अंदर नुक्स निकालेगी, राइट, कीड़े निकालेगी, कंपेयर करेगी सास ससुर को जो है वो अपने अम्मी अबू दो भी करेगी, उल्टी सीधी हरकतें करेगी, ताकि यानी अहमियत नहीं है ना इस निकाह के ताल्लुक की, अहमियत नहीं है ना शादी के ताल्लुक की। तो असल चीज अहमियत होती है, जिस चीज की अहमियत है हमारी निगाह में ना, वी स्टे वेरी केयरफुल, हम बहुत मोहतात रहते हैं उसके साथ, और जिस चीज की अहमियत निकल जाए फिर उसके बाद कोई एहतियात नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट। अल्लाह का हुक्म का भी यही मामला है, अहमियत नहीं है ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेरे लिए तो रेड कारपेट वेलकम इंतजार कर रही है, मैं बस अभी भी मेरे अल्लाह ताला मुझसे राजी है, मरने के बाद भी जो है अल्लाह ताला मुझसे राजी होगा, अल्लाह के हुक्म की क्या अहमियत है भाई, है अल्लाह ताला की तरफ से शर्तें वर्तें तो कोई है नहीं, बस बिला शर्त जो है वो अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है, वो भाई बेशक करता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि अल्लाह ताला सजा नहीं देता, आप जो है वो कोई नई आई है, आद और समूद जो है वो पता नहीं क्या वो डायनासोर किस्म के लोग होते थे, आद और समूद और कौम लूत है, वो आपकी तरह के इंसान नहीं होते थे जो अल्लाह ताला ने उनको अजाब दे करके जो है वो जहन्नुम रसीद कर दिया, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत नहीं करता था, क्यों, क्यों वो डायनासोर होते थे क्या, वो क्या होते थे, वो भी इंसान होते थे ना, आप भी इंसान तो हैं, वो भी तो इंसान थे, तो उनको जब अल्लाह ताला अजाब दे सकता है, उनको जो है वो मरदूद कर सकता है, हमें क्यों नहीं कर सकता, हमारा कोई कर्जा है अल्लाह ताला के ऊपर क्या, कि कर्जे के बोझ तले दब करके अल्लाह ताला हमें जो है वो जहन्नुम के अंदर नहीं फेंक सकता। अजीब व गरीब ना, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, पता वता कुछ है नहीं, अल्लाह की मोहब्बत का मतलब क्या होता है, उठा करके अल्लाह की मोहब्बत के नारे मारते रहता है खाली, अपने हकीकत को जानना चाहिए। तो बहरहाल मकसद यहां पर क्या था, अहमियत, अहमियत, चीज की अहमियत होगी सब सीधा हो जाएगा, वरना राग अलापते रहे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ससुराल की अहमियत, फिर चौथी बात यह है कि प्रेज देम इन फैमिली एंड फ्रेंड्स, इवन इफ यू डोंट लाइक देम दे विल स्टार्ट लविंग यू। ठीक है, कि अगर ससुराल वालों के बारे में बात हो तो खाविंद के सामने, लोगों के सामने, फैमिली के सामने, आपके दिल में उनकी मोहब्बत नहीं भी हो तो भी उनकी तारीफ करें, इसलिए कि जब आप तारीफ करेंगी तो उनके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस बनाया है, ठीक है, कि मोहब्बत खुद से पैदा नहीं होती, अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो जब इंसान पॉजिटिव अप्रोच रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है किसी के साथ ना, तो फिर उसकी तारीफ करता है, उसकी छोटी छोटी अगर कोई अच्छी चीज भी नजर आ जाए ना, तो उसकी जो है वो तारीफ करता है, बंदा तारीफ सुनता है, अल्लाह ताला उसके दिल में तारीफ करने वाले की मोहब्बत पैदा कर देते हैं। ठीक है, खुद से कोई चीज नहीं होती खुद से। ठीक है, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप तारीफें करें तो मोहब्बत पैदा हो जाए, ये कोई 100% मामला नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पैनाडोल के अंदर क्या तासीर अल्लाह ताला ने रखी कि जी पैनाडोल की दवा खाते हैं तो जो है वो बुखार उतर जाता है, लेकिन क्या हमेशा उतर जाता है? नहीं, हमेशा तो नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? क्योंकि अल्लाह की जब मर्जी नहीं होती तो उतरता। टाइलेनॉल खा लें, सर का दर्द दूर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी नहीं है। ठीक है ना, अब ये कोई थोड़ी है कि टाइलेनॉल खाइए तो जरूरन जो है वो बुखार उतर जाएगा। नहीं, उसी तरीके से किसी की तारीफ करिए तो जरूर बिल जरूर नहीं, जब अल्लाह चाहेगा तो होगा, जब अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगी मोहब्बत पैदा। तो हमारी तवज्जो जो है वो अपनी तारीफ पे अगर लग गई कि नहीं तारीफ तो करी थी, क्यों नहीं मोहब्बत पैदा हो रही, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह से तवज्जो हट गई, अपने अमल के ऊपर तवज्जो, सारा जो है ना वो अपने अमल के अंदर ही फोकस। नहीं, मैंने तो तारीफ करी थी, मैंने किताब में पढ़ा था, मैंने फलाने लेक्चर में सुना था, तारीफ करने से मोहब्बत पैदा होती है, मैंने तो इतनी तारीफें करी, क्यों नहीं मोहब्बत पैदा हो रही है? इसका मतलब है वो गलत कह रहे थे। तो भाई वो सही कह रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक केवियट ये था कि अल्लाह चाहते हैं तब तारीफ पैदा होती है, और तारीफ खुद से पैदा नहीं हो जाती, अल्लाह पैदा करते हैं तारीफ। ठीक है, तो इस वजह से ये बात याद रखें कि चूंकि अल्लाह ने मोहब्बत पैदा करनी है, तो सिर्फ तारीफ करना हमारा काम नहीं है, बल्कि एक और भी हमारा बहुत जरूरी काम है इसके अंदर, एक और भी बात हमने याद रखनी है। ठीक है, वो क्या है कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, ये जो हजरत ने फरमाया ना कि आपके दिन में उनकी मोहब्बत ना भी हो तो भी उनकी तारीफ करें, इस जुमले में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, और कहीं भी हजरत ने ये नहीं फरमाया, और ना हजरत का ये मफहूम था यहां पर कि झूठ बोलना शुरू कर दो, बिल्कुल भी नहीं। इस जुमले का ये हरगिज मतलब नहीं है कि झूठ बोलना शुरू कर दो तो उनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। याद रखें, जब ये आजिज आपको बार बार समझा रहा है कि मोहब्बत तारीफ ने नहीं पैदा करनी है, मोहब्बत अल्लाह ने पैदा करनी है, और झूठ बोलना जो है ना ये अल्लाह ताला की हक तलफी करना है, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करके अब अल्लाह से क्या तवक्कुल करती है कि अल्लाह आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा उनके दिलों में? नहीं। ठीक है, तो अब करें तो क्या करें, जब मोहब्बत ही दिल में नहीं है उनके लिए, तो फिर उनकी तारीफ करना है तो फिर झूठ नहीं बोले तो फिर क्या करें? तो अब आप बता दें इसका जवाब, क्या करें भाई? झूठी तारीफ करने को हजरत कह रहे हैं क्या है आप? नहीं, झूठी तारीफ को हजरत बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं, जवाब भी आगे ही मौजूद है। चले माशाल्लाह, इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो कि शायद पहले भी क्लास में आया था, कि अच्छा गुमान रखते हुए तारीफ करें, अच्छा गुमान रखते हुए कि उन्होंने जो ये गलत काम किया तो उनकी बुरी नीयत नहीं थी, राइट? कितना आसान है ये गुमान रखना, क्योंकि उनकी नीयत क्या थी आपको कभी भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि नीयत दिल का मामला है। ठीक है, तो आपको तो पता ही नहीं उनकी नीयत क्या थी, तो गुमान रखने अच्छी नीयत होगी। ठीक है, ये तो नहीं है कि आप देख रही हैं, दिल को देख रही हैं कि उसके अंदर गंदी गंदी नीयत लिखी हुई है, अब आप झूठ बोल रही हैं कि उनकी नीयत अच्छी थी। नहीं, आपको तो पता ही नहीं है कि उनकी नीयत क्या थी, तो अच्छा गुमान रख लें कि उनकी नीयत अच्छी होगी, तो इस तरीके से तारीफ कर दें, अच्छा गुमान रखते हुए। ठीक है, और ये भी इन्होंने अच्छा लिखा कि जब अहमियत होगी तो तो अच्छी बातों पर फोकस भी होगा तो अच्छाई नजर भी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इंसान जो होता है वो शैतान नहीं होता, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा शर हो, ठीक है। वो शैतान जैसे अमल करने का मतलब ये नहीं होता कि अब इंसान जो है वो शैतान बन गया है, वो शैतान जैसे अमल कर लिया उसने एक दफा, या कई दफा वो शैतान जैसा अमल कर लेता है, इस वजह से कह देते हैं कि हाँ भाई ये शख्स जो है ना इंसान, शैतान जो होते हैं वो इंसानी शक्ल में भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान जो होते हैं वो शैतान बन जाते हैं, नहीं, वो शैतान बन नहीं जाते, वो इंसान ही रहते हैं, बेशक शैतान जैसा कोई अमल करे। मिसाल के तौर पर किसी साहब ने जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करने वाली बातें कर दी जाकर के ना, बीवी को उस मियाँ के खिलाफ बात कर दी, शोहर के पास जाकर के बीवी के खिलाफ बात कर दी, तो इस शख्स ने क्या किया, इसने शैतान वाला अमल किया, शैतान वाला अमल किया इसने, क्योंकि शैतान मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालता है, तो इस इंसान ने शैतान वाला अमल किया, लेकिन इसका मतलब ये कि थोड़ी है कि वो शैतान बन गया, वो तो इंसान ही रहेगा ना। तो अब जब इंसान है तो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खैर होती है, राइट, बल्कि बहुत ज्यादा ही खैर होती है। तो अब जब आपके दिल में अहमियत होगी, जब आप पॉजिटिव के ऊपर फोकस करेंगी, तो उसके अंदर की छोटी मोटी अच्छाइयां आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। जब छोटी मोटी अच्छाइयां नजर आना शुरू हो जाएंगी तो उनकी तारीफ कर लें, राइट, उनकी तारीफ कर लें, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है, हर इंसान में। हाँ, तो वही आगे हजरत ने भी लिखा कि सास और ससुर भी इंसान ही होते हैं ना, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, और उनके साथ जो एक्सपेक्टेशंस यानी तवक्कुआत हो, हमेशा उनको कम से कम दर्जे पर रखें ताकि आप हर्ट ना हो, ठीक है, ताकि आप हर्ट ना हो। इसका मतलब क्या है, ताकि आप हर्ट ना हो, इसका मतलब ये है कि ताकि आपको उनकी अच्छाइयां नजर आ जाए। एक्सपेक्टेशंस ऊंची रखेंगी तो नो बडी विल बी एबल टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, और जब कोई एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाता तो फिर वो फेल हो जाता है, राइट, तो फिर वो फेलियर होता है, और फिर उसके अंदर अच्छाई आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस में पूरी नहीं उतर रही, ठीक है। तो अब तो अच्छाई नजर नहीं आएगी ना, तो फिर इसका हल क्या है, झूठ बोलते हैं, नहीं, झूठ नहीं बोल सकते, तो अब क्या करें भाई, एक्सपेक्टेशंस को लोअर करें, एक्सपेक्टेशंस को कम करें। जब कम एक्सपेक्टेशंस रखेंगी तो वो इंसान है वो आपकी कम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतर जाएगा, जब पूरा उतर जाएगा तो वो उसकी अच्छाई होगी, अच्छाई होगी तो अब उसकी अच्छाई करना और उसकी तारीफ करना आसान हो जाएगा आपके लिए। कहने का मकसद ये है कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, इस मसले का हल ये नहीं है कि झूठ बोल करके अपना काम चला लो, बल्कि इसका मतलब इसका हल ये है कि एक्सपेक्टेशंस को लो करें, अच्छाई के ऊपर फोकस करें, ठीक है, और नीयत जो है ना वो अल्लाह की रजा प्राइमरी रखें, और ये जो बातें हैं कि उसके साथ आपका ताल्लुक पैदा हो जाएगा इसको सेकेंडरी रखें। कैसे भाई, कि अल्लाह को राजी रखना प्राइमरी और उनके साथ ताल्लुक अच्छा हो जाना सेकेंडरी। ये इसलिए क्योंकि इंसानों के दरमियान मोहब्बतों का होना ये अल्लाह ताला की रजा में शामिल है, ये अल्लाह की रजा में शामिल है। अल्लाह ताला चाहता है कि सास ससुर के साथ बहू का ताल्लुक अच्छा हो, ये अल्लाह चाहता है। तो जब आप उनकी उनके साथ ताल्लुक को अच्छा बनाने के लिए एक्सपेक्टेशंस लो करके उनकी छोटी छोटी अच्छाइयों के ऊपर उनकी तारीफ कर रही होंगी, ये अल्लाह की रजा का सबब है। तो प्राइमरी नियत तो अल्लाह की रजा ही होनी है, लेकिन सेकेंडरी नियत उनके साथ ताल्लुक को अच्छा बनाना, क्योंकि वो अल्लाह की रजा का सबब बनता है, ठीक है। अब घर के अंदर जो फसाद होगा, अगर अगर आप उनके साथ ताल्लुक अच्छा नहीं बना के रखेंगे तो घर में फसाद होगा, राइट, सास के साथ फसाद होगा, या ससुर के साथ फसाद होगा, या शौहर के साथ भी फसाद होगा। तो अल्लाह ताला का क्या मामला है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युहिब, क्या है वो आयत, ला युहिब्बुल फसाद, ये तो है ना कहीं कुरान में, अल्लाह ताला फसाद से मोहब्बत नहीं करता, ठीक है। तो जब आपके घर में फसाद होगा तो वो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनेगा, और जब अल्लाह ताला जब आपके घर के अंदर मोहब्बतें होंगी तो ये अल्लाह ताला की रजा का सबब बनेंगी, शरीयत के दायरे में रहते हुए। ऑफकोर्स ये नहीं कि सास ससुर जो है वो उनको वो राजी होने के लिए कहें कि भी आप जो है वो देवर के साथ बेपरदगी करें, या आप जेठ के साथ बेपरदगी करें, ठीक है, तो अब जो है ना वो फसाद होगा, अगर मैं पर्दा करूंगी तो फसाद होगा, तो इस वजह से मैं जो हूं वो सास ससुर को राजी करने के लिए बेपरदगी करना शुरू कर देती हूँ ताकि सास ससुर राजी हो जाए और अल्लाह भी राजी हो जाए। नहीं, राइट, अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके अल्लाह ने राजी नहीं होना है। जिस तरह झूठ बोल करके अल्लाह ने राजी नहीं होना है, उसी तरह बेपरदगी करके अल्लाह ने राजी नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये तो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ शरीयत हो रही है, ये आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ शरीयत नहीं हो रही कि झूठ बोल करके राजी कर लिया, तो बेपरदगी करके राजी कर लिया, या धोखे दे करके राजी कर लिया, ये बात नहीं हो रही यहाँ पर बिल्कुल भी, ठीक है। इन्होंने चले जदाकुमुल्लाह, आयत भी लिख दी, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद फिल अर्ध, और आपका घर भी अर्ज में शामिल है, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला जमीन में फसाद से मोहब्बत नहीं करता। तो क्या घर जमीन के अंदर शामिल नहीं है कि घर में अगर फसाद हो रहा होगा तो फिर अल्लाह ताला उससे मोहब्बत कर लेगा? नहीं ना, घर भी तो जमीन में शामिल है, ठीक है। तो बात यहां पर आखिरी बात फिर वही जो कि पिछले पॉइंट में भी करी थी कि जब किसी बात की अहमियत होती है ना, अब बंदा उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालता है, ठीक है। तो यहां पर या पिछली पिछली पॉइंट में थी कि निकाह की अहमियत हो गई, तो निकाह को सेव करने के लिए, निकाह की बरकतों को सेव करने के लिए आप जो है वो उनके तोहफों के अंदर नुक्स नहीं निकालेंगे। यहां पर झूठ अल्लाह के हुक्म की अहमियत होगी, तो झूठ से बचने के लिए फिर आप उनकी झूठी तारीफ करने के बजाय सच्ची तारीफ करने का कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, सच्ची तारीफ करने का कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुक्म की अहमियत है, ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है वो काजिबीन से, झूठ बोलने वालों से मोहब्बत नहीं करते, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की अहमियत है, तो फिर झूठ से बचेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला बात की समझ अता फरमा दे कि भाई अल्लाह की मोहब्बत असल चीज है ना, ठीक है। और अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलती है? अल्लाह ताला की रजा की खातिर अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने की कोशिश करने से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, ठीक है। अच्छा, बाकी हमारी जिंदगी के मसले हल करना, ये अल्लाह के लिए बाएं हाथ का भी मसला नहीं है, वो कहते हैं ना वो बाएं हाथ का खेल है, ये तो मुहावरा है, बाएं हाथ का खेल है, अल्लाह ताला के लिए तो कोई कोई बात ही नहीं है हमारे जिंदगी के मसलों का। अल्लाह ताला जब हमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, हमसे खुश हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला के लिए हमारे छोटे छोटे निक्के निक्के मसलों को हल कर देना हमसे मुश्किल काम है। अच्छा, अगली बात के फिफ्थ पॉइंट, पांचवी चीज ये है कि ऑलवेज ट्रीट देम रिस्पेक्टफुली, तो उनके साथ हमेशा इज्जत से पेश आए, अदब से पेश आए। तो इज्जत और अदब ये क्या चीज होती है भाई? इज्जत से पेश आए, इज्जत से पेश आए, अच्छा तो क्या होता है अदब से पेश आए? यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब होता है इज्जत का, अदब का, ठीक है। तो अदब ने तो आगे बात निपटा दी कि आपका ये अदब और इकराम उनके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा करेगा, ठीक है। तो अदब इकराम कोई नहीं मोहब्बत पैदा करेगा, इज्जत फरमाना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपके अदब की वजह से उनके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा करेगा, ठीक है। अद्दीनु कुल्लुहु अदब, दीन सरासर अदब का नाम, ठीक है। अदब ने बहुत प्यारी किताबें कंपाइल करी या किसी से गलवा करवाई थी, खुद भी उसके अंदर बहुत कुछ लिखा, उसका नाम है बा अदब बा नसीब, राइट। तो उस किताब को तो यानी हर एक को घोल के पी जाना चाहिए, और घोल के पी जाने का मतलब क्या है कि पेपर्स फाड़ो किताब के और पानी में भिगो करके उस पानी को पी लो, यही होता है ना घोल के पी जाने का, ठीक है। तो खुदा के वास्ते कोई और ही हरकत ना करें, किसी ने करने की कोशिश करी थी, तो इस वजह से घोल के पी जाने का मतलब ये नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि ऐसे तवज्जो से पढ़ो और ऐसे बार बार पढ़ो कि वो अजबर हो जाए, और भी मुश्किल लफ्ज बोल दिया, अजबर हो जाए, यानी बिल्कुल आपको रट जाए ना, आपके जहन के ऊपर सिमा जाए, छा जाए आपके ऊपर, क्योंकि अद्दीन कुल हो अदब, ये जो दीन है जो कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमारे लिए निजात का और कामयाबी का वाहिद रास्ता रखा है, ये सारा का सारा अदब ही है, अदब ही है। तो अदब क्या, कैसे करना है, करना क्या है उसके अंदर, वो आपको काफी शाफी जो है वो उस किताब में मिल जाएगा। उसके अलावा और लोगों की माशाल्लाह हमारे मशाइख ने उसमें काफी समझाए हैं हमें। तो इज्जत से पेश आए, अदब से पेश आए, इसकी चंद मिसालें कि कैसे अदब से पेश आए, कैसे इज्जत से पेश आए, इसका मतलब क्या होता है। तो मिसाल के तौर पर सबसे अहम बात और सबसे पहली बात तो क्या है, अदब से पेश आना, इज्जत से पेश आना, इसमें सबसे पहली बात क्या है कि जो के जिससे के मसला बहुत आसान हो जाएगा समझना, ठीक है, वो है ना उसूल, जो कि हम हर जगह ही फिट करने की कोशिश करते हैं उसको, अल अशियाउ तोरफू बेअज़दादिहा, कि चीजें अपनी जिद से आसानी के साथ समझ में आ जाती हैं, अपने ऑपोजिट से ज्यादा आसानी के साथ समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इस उसूल को यहां पर भी अप्लाई करते हुए इज्जत से पेश आने का मतलब क्या है कि बेइज्जती के साथ पेश ना आए, बेअदबी के साथ पेश ना आए, ठीक है ना। इज्जत से पेश आने के तरीके बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि हमारा वास्ता नहीं पड़ता ना, हम ज्यादातर इज्जत के साथ पेश आना को देखते नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली आजकल के मुआशरे के अंदर ज्यादातर बेइज्जती होती है ना, इज्जत तो नहीं होती, ठीक है। तो बेइज्जती से बड़ी अच्छी तरह से लोग वाकिफ होते हैं, इस वजह से बेइज्जती से पेश ना, वो जो बेइज्जती वाले तरीके होते हैं जिनको के देख करके आपको भी अच्छा नहीं लगता, कोई आपके साथ करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, कोई दूसरे के साथ करे तो उसको भी देख करके आपको बुरा लगता है, वो नहीं करें, ठीक है, बदतमीजी ना करें, बेअदबी ना करें। अच्छा, अब बदतमीजी बेअदबी, एक तो वो उसकी डेफिनेशन ये हो गई कि भाई आपको बुरा लगता है ना, तो जिन चीजों से आपको बुरा लगता है वो चीज आप किसी और के साथ भी ना करें, सास ससुर के साथ भी ना करें, ठीक है। तो अब करें तो क्या करें फिर उनके साथ, यानी ये तो ना करें ना, लेकिन करें क्या, तो करने की चंद मिसालें जहन में आती हैं। एक तो ये है कि जब वो आपसे बात कर रहे हो तो तवज्जो मुतवज्जो हो जाए उनकी तरफ, ठीक है, हमातन गोश, हमातन गोश का मतलब क्या होता है कि ऐसे उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाए जैसे कि कान जो है ना वो सिर्फ आपके सर के साइड में नहीं लगे हुए बल्कि पूरे जिस्म में आपका कान लगा हुआ है, जिसको कहते हैं हमातन, पूरे के पूरे कान बन जाए, ठीक है। ये एक तरीका होता है बात करने का, बात सुनने का, कि ऐसे मुतवज्जो होकर के बात सुने कि अगले बंदे को लगे कि आप फुली फोकस्ड हैं उसकी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा फायदा है साहब इसको, खास तौर पर जब नए नए मौलवी बने थे या मौलवियों के साथ जुड़े थे, उलमा मशाइख के साथ, तो उस वक्त होते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो अब अमेरिका के अंदर आपको पता है कि जॉब पे भी जाना होता था और जॉब के ऊपर खवातीन भी होती थी, औरतें भी होती थी, और वहां की औरतों का आपको पता ही है कैसे उनके अहवाल होते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो कोई मैनेजर आकर के आपसे बात कर रही है, औरत है वो, और बात तो उसकी सुननी है और आपको हमातन गोश होकर के उसकी बात सुननी है, तो अब क्या करें भाई, नजरों की हिफाजत करना है। कुरान मजीद में भी अल्लाह का हुक्म है, हमारे हजरत भी हमें जो है वो अल्लाह का हुक्म याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं, बदनजरी से बचना है, बदनजरी से बचना है। तो अब बदनजरी से बचना भी है, बात भी जो है वो ऐसे सुननी है कि उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मैनेजर है, ठीक है। जॉब करनी है तो फिर मैनेजर को सुननी है ना, ये जॉब नहीं करनी तो ठीक है भाई आप इस्तीफा देकर के वापस आ जाए, घर में बैठ जाए फिर उसके बाद, लेकिन ये तो नहीं करना, और अदालत ने पहले जो है वो ठोकाई लगानी अगर ये हरकत करी तो। अब क्या करें, अब जो है वो ऐसे उसकी तरफ मुतवज्जो हो कि निगाहें जो है वो किसी और तरफ हो, कान जो है वो उसकी तरफ हो। अब कानों से तो बदनजरी नहीं होती ना, नहीं, बदनजरी किससे होती है, आंखों से होती है, कान से नहीं होती बदनजरी, ठीक है। तो कान मुतवज्जे हो जाए और जिस्म का पोस्चर ऐसा हो जाए, बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाए कि अगले बंदे को लगे कि हाँ ये मेरी बात सुन रहे, ठीक है। तो जब ये किसी ऐसी गैर महरम और औरत के साथ जो ऐसी बात हो सकती है मजबूरन जरूरतन, तो सास ससुर के साथ ऐसे क्यों नहीं हो सकते, रिश्तेदारों के साथ ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से बात को सुनना ये बहुत बड़ा अदब होता है, और बात ना सुनना, ये बहुत बड़ी बेअदबी होती है, बहुत बड़ी बदतमीजी होती है। ठीक है कि अगला बंदा तो आपसे बात कर रहा है और आप जो है वो लगे हुए किसी और के अंदर, आपके साथ आपके शौहर करते हैं तो आपको लगता है ना, फिर उसके बाद दिल को जाके लगती है कि आप तो बात कर रही है, वो जो है वो अपने कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, एक हंगामा खड़ा हो जाता है अगर आप जो है वो बात कर रही हो और वो आपकी बात ना सुन रहे हो। ठीक है, तो क्यों, इसलिए कि बेअदबी होती है ना। तो कम से कम बड़ों के साथ तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, हम तो छोटों के साथ बर्दाश्त नहीं करते कि छोटे मतलब। खैर बहरहाल, तो बात गौर से सुनना, ये अदब की एक बहुत बड़ी शक्ल है। ठीक है, अच्छा एक और बात जहन में आ रही थी कि अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, घर में आपने अपना कोई ऐसा काम करना है जो कि दूसरों को भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो कोई आ गए तो अब जो है ना ये ना करें कि जल्दी से जो है ना अपना काम निपटाए और भागे उनसे। ठीक है, जिसको कहते हैं ना अपना उल्लू सीधा किया और चल पड़े, बल्कि उनसे भी पूछ लिया कि मैं आपके लिए भी ये काम कर दूं। मिसाल के तौर पर चाय बना रही है, ठीक है, तो अब जो है वो ससुर साहब आ गए या सार साहब आ गई, तो आप चाय बना रही थी, तो एक तरीका तो ये है ना कि जल्दी से चाय बनाओ निकलो इधर से, नहीं बल्कि मैं आपके लिए भी चाय बना दूं। ठीक, या कोई इस किस्म के और दस दस काम होते हैं, मैं आपके लिए भी कर दूं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अदब होता है। ठीक है, इससे बंदे का दिल खुश हो जाता है, बल्कि इससे जो है ना वो दिल से दुआएं निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरी मिसाल जहन में आ रही थी, और तीसरी ये कि इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं कि जैसे वो कमरे में आए हैं तो उनके लिए जो है वो थोड़ा सा, बल्कि ये तो बाद बानसीब के अंदर भी लिखा हुआ भी है, बल्कि हदीस के अंदर भी है ना, कि थोड़ा सा जो है वो अपनी जगह से खिसक जाएं, अगरचे कि उनके बैठने के लिए जगह मौजूद है लेकिन वो आ रही हैं या आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक जाना कि गोया कि आप उनके लिए जगह बना रहे हैं, हालांकि जगह मौजूद है फिर भी। ये अदब की एक मिसाल है। या ये कि आप बैठी हुई हैं, जो भी सिचुएशन है कि उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, कुर्सी ला करके रख देना, कुर्सी आगे कर देना। ठीक है, और इससे भी बढ़ करके अगर ये कोई करे तो फिर तो माशाल्लाह के बाहर निकल रहे हैं घर से, और अब जूता पहनने की बात आई है तो माशाल्लाह, ऐसा कोई करे ना जरा अपने सास ससुर के लिए जूता पहना देना। ठीक है, खुसूसन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो फिर झुक करके जूते को जो है वो अपने पैर के अंदर एडजस्ट करना ही इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में जो है वो झुक करके थोड़ा सा जरा सा उंगली डाल करके ऐसे में उसको कर दें। ठीक है, ये इतना बेहतरीन अदब है, ये हमने अपने मशाइख से सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये दीन वालों में ये होता है, ये दुनिया वालों में तो इसका तस्वीर ही नहीं हो सकता, किसी आग को आगे बढ़ करके जूता पहना देना या जूता उनके सामने ला करके उनके यानी स्ट्रेट करके रख देना। ये जो माशाल्लाह दीनदार घरानों के और दीनदार मुआशरे के लोग हैं उनको ये बात पता है कि ये कितना होता है और कितना अहम होता है ये। ठीक है, दुनिया वालों को ये लज्जतें हासिल नहीं है, वो तो बेचारे महरूम ही दुनिया से चले जाते हैं। और फिर आखिरी दर्जा ये है कि भाई थोड़ा खिदमत वगैरह और भी अगर कोई दर्द वगैरह है तो थोड़ा पैर दबा देना, ये सब फिर माशाल्लाह बहुत ही। और इससे ना सिर्फ ये कि उनके दिल में मोहब्बत पैदा होती है, उनकी जो है वो दुआएं मिलती हैं, बल्कि इससे भी बढ़ करके जो फायदा होता है ना वो ये होता है कि इंसान का अपना नफ्स जो होता है ना वो मरता है, अपना नफ्स जो होता है वो कमजोर होता है, जिस वजह से हमारे हजरत जो है ना वो हमारे मशायख खुसूसन वो उनके यहाँ होता है पैर दबाओ भी आकर के। ठीक है, बल्कि हुक्म भी दे देते, आओ जाके पैर दबाओ, आओ आके पैर दबाओ। ठीक है, तो वो हजरत फिर अपना बताते रहते थे अक्सर जो है ना, वो हम जैसे लोग जो हैं वो तो भाई ये क्या भाई ये तो शख्सियत परस्ती है और ये तो फलाना है ढमकाना है, जहालत की वजह से हम ये ऐसी बातें करते हैं, हमें पता नहीं होता वो क्यों उस किस्म की खिदमत करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं कि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बल्कि आपके नफ्स की इस्लाह के लिए। और फिर हजरत अपना वाकई भी बताते थे कि पहले मैं पैर नहीं दबाता था, मैं लोगों को मना कर दे रहा था, फिर किसी ने मेरे शेख से मेरी शिकायत की कि ये पैर नहीं दबाने देते हैं, तो मेरे शेख ने मुझे फिर समझाया कि नहीं तुम अपने लिए नहीं तुम इनके लिए अपना पैर दबाया करो इनसे, क्यों, क्योंकि इससे इनकी इस्लाह होगी। इनकी जो है वो नफ्स का तज़किया होगा, इनका जो है वो नफ्स जो है वो कमजोर होगा। ठीक है, तो अब जाहिर है इसके अंदर थोड़ा हालात वगैरह का लिहाज रखते हुए कि किससे किस वक्त क्या काम करवाना है, फिर ये इस तरह से करवाना चाहिए काम। लेकिन हमारा क्या फायदा है इसके अंदर, हमारा फायदा ये है कि हमारे अंदर से अनाज होती है ना वो खत्म होती है, और यही फिर कामयाबी का सबूत बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो है फिर हम अगली क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे। बस आपके सवाल, अगर ये जवाब जब जो भी आप कमेंट लिखा है तो वो हम पढ़ लेते हैं। मेरे बेटे जो हाफिज हैं वो हमेशा नोट पहनाते हैं मुझे। नोट तो आपको नहीं पहनाते होंगे माशाल्लाह, नोटों का हार आपको जूता पहनाते होंगे। ठीक है भाई, मदरसे जूते ना, हाँ जूते पहनाते हैं आपको। बस देख लें, ये कुरान मजीद के हिफ्ज की बरकत है, ये मदरसे की बरकत है, ये उस अदब की बरकत है जो के दीन वालों के पास मिलता है। वरना इस दुनिया के अंदर आज ऐसी औलाद की कमी नहीं है कि जो के अपने माँ बाप को जूतों का हार भी पहना, बल्कि जूते मारते भी हैं। ऐसे भी औलाद इस दुनिया के अंदर, और मुसलमान सो करोड़ मुसलमान घरानों के अंदर भी ऐसी औलाद मौजूद है। ठीक है, तो ये दीन तो हमारी जिंदगी है, इस दीन के बगैर कोई जिंदगी है ही नहीं। तो कितनी प्यारी जिंदगी है, कितनी अच्छी जिंदगी है कि जिसके अंदर औलाद आकर के माँ बाप को जो है वो जूते पहनाए, जूता उनके सामने सीधा करके रखे, और इसके बगैर जो इंसानियत है वहां पे क्या हो रहा है आपको अंदाजा ही होगा। ठीक है, तो हमें तो बस लग जाना चाहिए कि हम खुद भी दीन को सीखें, उस पर अमल करें, और सबको दीन सिखाएं, सबको दीन के बारे में बताएं, ताकि सबकी जिंदगी जो है ना वो जहन्नुम से निकल करके दुनिया में रहते हुए ही जन्नत का नमूना बन जाए। ऐसी हमें सोच और ऐसे हमारे अंदर खैरख्वाही होनी चाहिए हर एक के लिए। अच्छा, किसी और ने कुछ और लिख दिया है, वो भी पढ़ लेते हैं कि हमने पढ़ा था तफसीर में कि लड़ाई अजाब है, तो ये किस गुनाह की वजह से होती है, कोई पर्टिकुलर गुनाह कि जिसकी वजह से अजाब, लड़ाई वाला अजाब मुसल्लत होता है, कोई पर्टिकुलर गुनाह? ऐसा तो कोई अभी जहन में नहीं आ रहा है कि कोई खास गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह ताला लड़ाई वाला अजाब मुसल्लत करते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला का हर हुक्म ही जो है ना वो उसकी नाफरमानी अजाब को दावत देती है। और जो तफसीर के अंदर बात समझाई थी वो यही थी कि गुनाह तो हम जो भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के पास से फिर जो अजाब आता है वो फिर मुख्तलिफ सूरतों में होता है, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। तो ऊपर से आने वाला अजाब, नीचे से आने वाला अजाब, और दरमियान में लड़ाई के जरिए से आने वाला अजाब। तो ये तो फिर अल्लाह ताला की हिकमत होती है कि किसको किस किस्म का अजाब देना है। ठीक है, बाकी ठीक है। तो अच्छा, सुन, इन्होंने एक माशाल्लाह जबरदस्त छोड़ी है फिर, कि मेरी छोटी बहू बाहर जाते हुए मेरे लिए मेरा जूता रैक से निकाल कर मेरे सामने रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि उसका ताल्लुक दुनियादार घराने से।
अरे खाओ जी, पेट भर था।
अच्छा, अब इसका क्यों जवाब दें भाई?
पेट भर जाता
कोई सॉरी जी, मैंने गलती गलत कह दिया था कि दीन असल हयात है। आपने तो प्रूफ कर दिया अपनी बहू का वाकया बयान करके कि नहीं, दुनिया दीन के बगैर भी काम चलता है, बहुत अच्छा चलता है। ऐसे ही है,
इनको भी डाल लो जी, इनको भी डाल
बताएं
लो,
कोई इनका जवाब।
इनको भी डाल लो।
हालांकि
अरे तुम
पिछले
सब नाच
इतवार को जो आप ही के
सकते
शहर के
नहीं,
अंदर
सब
बयान हुआ
नाच
था और आपने
लोगे
इनवाइट भी
ना।
किया था, तो उस वाले बयान के अंदर ये बात हुई थी। किसी को याद है जो उस बयान को सुन रहे थे या उसके अंदर शामिल थे? किसी को बात याद है? उसके अंदर इनकी इस बात का जवाब मौजूद था। जी माशाल्लाह, ठीक है, इनको बात याद है कि ये जो खानदानी शराफत होती है ना, माशाल्लाह आपने दिल खुश कर दिया, अल्लाह ताला को बेहतरीन जगह खैर अता फरमाए। पता नहीं आपका नाम हनाना सेंटर है तो नहीं होगा आपका असल नाम। ठीक है, कि ये जो खानदानी शराफत और ये जो रख रखाव वगैरह हमें नजर आते हैं ना, ये असल में दीन की बाकियात ही होती हैं। ये दुनियादारी की वजह से नहीं होता, ये दीन की बाकियात होती हैं जो पिछली किसी वो ऊपर किसी जो है ना वो आबाओ अजदाद के अंदर मौजूद था दीन, और वहां से जो है वो दीन तो खत्म हो गया, अल्लाह के हुक्म तो खत्म हो गए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें तो खत्म हो गई, लेकिन ये खानदानी शराफत अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये नहीं होता कि ये दुनियादारी की वजह से, ठीक है, ये दीन ही की वजह से होता है, लेकिन दीन की जो असल चीज है वो अल्लाह के हुक्म है। ठीक है, इनके बगैर दीनदारी नहीं होती, इसी वजह से उसको दुनियादारी कह देते हैं, और बाकी ये चीजें रख रखाव और ये सारी चीजें जो है ना। अच्छा, एक और भी चीज है कि अगरचे के जूता पहना देना तो मीडिया पे नहीं सिखाया जा रहा होता, लेकिन मीडिया के ऊपर जो है ना वो भी आजकल बहुत सारी जो है वो जो कि वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने भी तो हमसे बहुत सारी चीजें सीखी, जाहिर है तौहीद नहीं सीखी, बंदगी नहीं सीखी, लेकिन आदाब अखलाक बहुत सारी सीखे उन्होंने। अब हम वहां से सीख रहे हैं, अब हम जो है ना ये आदाब अखलाक इखलाक जो है वो अमेरिका यूरोप से सीख रहे हैं, सिंगापुर जापान से सीख रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमें तो कुरान और सुन्नत से सीखना था, लेकिन हम इधर से नहीं सीख रहे हैं, उधर से सीख रहे हैं। तो अब मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी ये रख रखाव और एटिकेट्स और मोरालिटी और इंसानियत और सो कॉल्ड ये सारी चीजें सिखा रही होती हैं, तो अब इधर से भी बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें सीख रहे हैं। बेशक जूते पहनाना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मीडिया वाला आपको सिखा रहा होता है, लेकिन और बहुत सारे एटिकेट्स जो होते हैं वो इस बेहया मीडिया के ऊपर भी सिखाए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों रीजंस हैं, या तो ऊपर की बाकी बची खुची जो रह गई है वो है, या ये कि मीडिया के जरिए से जो है वो एटिकेट सीख 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 करके जो है वो लोग तमीजदार बन रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ तो भाई अल्लाह के हुक्मों की अहमियत है। ठीक है, हमें उसी के ऊपर फोकस करना है और उसी के जरिए से हमें फिर बाकी आदाब और अखलाक भी सीखने हैं और अपनी औलादों को सिखाने हैं। अल्लाह ताला बात की समझ आवाज तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।